ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ ਵਿਜਿਟ ਕਰੋ brampton.ca/engage।
ट्रक का घूमता पहिया कनाडा की मईशत की तरक्की का जामिन। आपका ट्रक सड़कों पर राज करे और कनाडा की मईशत तरक्की की राह पर गामजन रहे। ट्रक मैनुअल या फिर ऑटोमेटिक, ट्रक की बेहतरीन सर्विस के लिए क्विक ट्रक लियो थ्रू आउट ओंटारियो। नो अपॉइंटमेंट नीडेड, ड्राइव थ्रू फैसिलिटी, वन स्टॉप शॉप। अब तीसरी लोकेशन एग्जिट 579 फ्रॉम हाईवे 401 इन नैपनी। क्विक ट्रक लियो 519-622-0660 quicktrucklube.com।
अल हुदा इंस्टीट्यूट कनाडा पेश करता है वेस्टर्न कनाडा टूर 2024 विद डॉक्टर फरत हाशमी एंड डॉक्टर इदरी जुबैर। ये टूर 29th ऑफ जून सैटरडे के दिन कैलगरी से शुरू होगा और 14 जुलाई संडे के दिन सरे वैंकूवर पर खत्म होगा। इस टूर की मुकम्मल मालूमात के लिए कॉल 647-388-4595। क्या आपके घर और ऑटो इंश्योरेंस की रिन्यूअल हो रही है? क्या आप दुरुस्त इंश्योरेंस कवरेज के लिए अच्छी कीमत की तलाश में हैं? तो फिर आपको ऑल स्टे एजेक एजेंसी के राजा मुदस्सिर को 647-290-3773 पर कॉल करनी चाहिए। आज ही कॉल करें और आप दो कारों और एक घर की इंश्योरेंस कराते वक्त तकरीबन $1,775 की बचत कर सकते हैं। राजा मुदस्सिर 647-290-3773 ऑल स्टेट के साथ आप महफूज हाथों में हैं। टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई।
अपनी कम्युनिटी का सब तो वड्डा, वधिया क्वालिटी वाला ते सब तो पुराना सोडी फर्नीचर हर घर दी पहचान बन चुकी है।
ओ फिर बने भी क्यों ना, क्योंकि बेडरूम सेट, सोफा सेट, मैट्रेसेस, डाइनिंग टेबल, डेकोरेटिव आइटम्स, गल कीजिए सारे घर दा फर्नीचर वधिया क्वालिटी ते डिस्काउंटेड प्राइस ते मिल जांदा। सोडी फर्नीचर तो 3 साल लई नो ब्याज।
142 कैनेडी रोड, ब्रैम्पटन, 9058747471।
770 AM دی نشریات سنن تے حالات حاضرہ تو باخبر رہن دے واسطے نیوز انفارمیشن انالیسس الیکٹرک گڈیاں دے وچ ای آواز آفیشل ایپ یا ساڈی ویب سائٹ eawaz.com لوکل نمبر 6478724900।
چاندنی
بینکویٹ ہال
انٹیلیجنٹ چوائس لوکیشنز Sound System Innovations, Chandni Banquet Hall.
30 years of hospitality experience. Corporate event, exhibition, expo or any celebration.
Sare package ka naam, Chandni Banquet Hall. Aaj hi call kijiye. 437-218-8734. ChandniHalls.ca।
यूं ही चला चल रही, यूं ही चला चल रही प्लानिंग फॉर वेकेशन।
हवाई टिकट की कीमतें तो आसमान को छू रही हैं।
अरे मेरे लिए कोई डील तो देखो।
और मशीन के बजाय रिप्रेजेंटेटिव से बात करें।
है ना एयरविंग ट्रेवल, होलसेल रेट, पाकिस्तान, इंडिया और मिडल ईस्ट, एवरीवेयर वेयर यू वांट टू ट्रेवल।
एक्सीलेंट एक्सीलेंट।
पर्सनलाइज्ड ट्रेवल सॉल्यूशंस, अफोर्डेबल, इजी एंड डिस्काउंटेड एयरफेयर्स।
Airwing Travel and Tours,
905-272-2300, 905-272-2300।
ओपन माइक कैफे एंड कुजीन, जहां आपको मिलेंगे मजेदार खाने जैसे कि लाहौरी गोट कड़ाही, शिनवारी गोट कड़ाही, निहारी, हलीम, पाए, बिरयानी, सीख कबाब, चिकन टिक्का, शवरमा, पिज्जा और मजेदार लाहौरी छोले, पालक पनीर और बहुत सी वेजिटेरियन ऑप्शंस। ओपन माइक कैफे एंड कुजीन, वही देसी अंदाज और वही देसी जायका। 1310 दंदा स्ट्रीट ईस्ट, मिसिसागा, यूनिट 3। ऑर्डर नाउ, कॉल 416-526-6800।
दांतों का कोई भी मसला हो या करानी हो डेंटल क्लीनिंग, डॉक्टर फयाज एंड एसोसिएट्स आपकी पहली चॉइस। पैराडोंटिक्स, ऑर्थोडोंटिक्स, डेंटल इम्प्लांट, कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री एंड मच मोर। वार्म एंड फ्रेंडली एटमोस्फियर जहां आप अपनी जबान में अपनी तकलीफ बयान कर सकते हैं। आपके पास डेंटल इंश्योरेंस है या नहीं, कोई मसला नहीं। स्कारब्रो में एक और मिसिसागा की दो लोकेशंस पर आपको सर्व करते हैं। अपॉइंटमेंट के लिए अभी कॉल कीजिए 9052325678 मिसिसागा 4167579999 स्कारब्रो।
इन सब कामों के लिए तो मुझे बैक होम ही जाना पड़ेगा।
कौन से काम?
वही, बेटे की शादी सर पर है और ज्वेलरी का खास काम अभी तक नहीं हुआ।
बस इतनी छोटी सी बात। पायल ज्वेलर्स पे सब किस्म की ज्वेलरी है और वो स्पेशलाइज करते हैं इन सब में ही, दुबई, सिंगापुर, इंडिया, पाकिस्तान और यहाँ की तमाम लेटेस्ट ज्वेलरी।
मुझे उनका एड्रेस बताओ, मैं आज ही ये काम जाके करवाती हूँ।
जी जी बिल्कुल, पायल ज्वेलर्स का एड्रेस है 2720 नॉर्थ पार्क ड्राइव, यूनिट 42, ब्रैम्पटन। पायल ज्वेलर्स, कॉल करें 9057907879, दैट इज 9057907879।
भाई सस्ता ला ला, इंज कर तू 6 दी बजाय 5 ले ला। ओहो सल्ला भैन जी, कैनेडा आ गए तुसी, इत्थे सब्जियां पिछे बारगेन करन दी लोड़ नहीं, क्योंकि एशियन फूड सेंटर ते वधिया फ्रेश ग्रोसरी, फ्रूट्स, दाला, सब्जियां सब कुछ बहुत घट कीमत विच मिलदा।
ए है जी एशियन फूड सेंटर, इंडो कैनेडियन ग्रोसरीज, फल फ्रूट, दाला, सब्जियां दी वन स्टॉप शॉप। नाले साडे कोल इंडिया वाले भांडे, प्लेटां, बाटियां सब कुछ मिलदा। साडी सारियां ही लोकेशंस ते सोहणियां सोहणियां रखड़ियां दी बेशुमार वैरायटी भी है। एशियन फूड सेंटर दियां ओंटारियो विच 9 लोकेशंस विचों जिथे मर्जी आ जाओ।
एना सोना कर लिया, हुन अप्लायंसेस भी स्टेनलेस स्टील दे ही चाहिए।
हाँ जी, स्टेनलेस स्टील दे अप्लायंसेस मिलेंगे तानू ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस ते, जिसे फ्रिज, स्टोव, डिशवॉशर, थ्री पीस किचन बंडल, इसके अलावा फ्रंट लोड वॉशर एंड ड्रायर, एनर्जी सेवर, एनर्जी स्टार, फिर टीवी सेक्शन इच सोनी, सैमसंग, पैनासोनिक, शार्प, हर साइज से हर ब्रांड का टीवी विद द लोएस्ट प्राइसेस इन द टाउन, सिर्फ ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस ते। ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस 801 Bowie Drive West Brampton, ya call karo 905-450-2828 905-450-2828।
वेलकम बैक तमाम सामीन जो हमें 770 AM डायल पर सुन रहे हैं और ई आवाज टीवी पर देख रहे हैं। मुझे खूबसूरत आदमी को जनाब, बिल्कुल आपको पता ही है, इसमें कोई सेल्फ तारीफ वारीफ नहीं है, दुनिया यही कहती है। भारत प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और 6:07:57 हमारी घड़ी में हो चुके हैं। खबरें गर्म हो गई जनाब, बिल्कुल खबरें एकदम गर्म हो गई है। प्रेशर कुकर ने सीटी बजा दी है, जैसे बोलते हैं ट्रेन सीटी बज गई, ट्रेन चलना शुरू हो गई, तो ये भी सीटी बज चुकी है। और हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हो चुकी हैं शाजिया मलिक साहिबा, तो उनको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, कैसी हैं?
वालेकुम सलाम, तुमने अभी कहा आप मुझे सुन रहे हैं, भाई क्यों सुन रहे हैं भाई क्यों, इधर तूफान नहीं आ रहा कोई, इधर बैरल को क्यों क्यों नहीं आ रहा कि एक दिन की छुट्टी करें भाई, हम आप क्यों हमें सुनना सुनाना चाह रहे हैं, क्यों हम तुम्हें सुने, क्यों हम तुम्हें खूबसूरत आदमी को देखें, हमें छुट्टी चाहिए, तूफान लाओ इधर, स्टॉर्म लाओ ताकि हम छुट्टी करें।
आप मुझे देखती हैं, आपकी नेकी में इजाफा हो रहा है।
अच्छा अच्छा, नहीं नेकियों तुम्हारियों में इजाफा हो रहा है, तुमने जन्नत में जाना है, मैंने नहीं जाना।
नहीं नहीं, देखें जन्नत में देखना भी जो है ना वो एक सवाब का काम है, आप इंजॉय करें।
अच्छा अच्छा,
और ये क्या तूफान में क्या अभी छुट्टी हो जाएगी कोई?
तूफान लाओ भी, कोई छुट्टी छुट्टी करें।
मैडम आपको घर से उठा के ले आ जाएंगे।
अच्छा तुमने डाला इधर मंगवा लिया है?
सब डाले यहाँ चल रहे हैं, ब्लैक रंग के, पीले रंग के, सब चल रहे हैं।
अच्छा,
चाहे बिजली हो आपके घर में,
हाँ,
या आपके घर में तूफान आए,
हाँ, हमारे पास डाला तैयार है,
आपको उठा लिया जाएगा। इस खुश फहमी, मतलब आपको डिस्क्लेमर में इसलिए चला रहा हूँ,
हाँ,
इस खुश फहमी में आप नहीं रहिए
कि आपको काम नहीं करना पड़ेगा, आपकी छुट्टी होगी,
इससे ही एक्सपेक्ट नहीं करिएगा। हाँ मतलब मैं बिल्कुल इस मामले में बहुत सख्त,
यानी तुम बिल्कुल हथौड़ा ग्रुप बन चुके हो।
सख्त हूँ ना इस मामले,
जैसे तुम बीवी के साथ सख्त होकर के आया। हाँ हाँ मुझे पता है तुम दीदी के साथ बहुत सख्त हो
घर से
ऑफिस में घर के बाहर
घर के बाहर हाँ मतलब मैं उसकी कोई बात भी नहीं मानता
हाँ घर के बाहर बिल्कुल ऐसे ही है ऐसे ही
है सिलसिला
लेकिन मुझे आज बहुत ज्यादा एतराज है दुनिया सारी में जी तबाही आई हुई है डेरे लाया हुआ है हैं कोई कहाँ पे लैंडस्लाइड्स हो रही हैं कहीं आंधियां तूफान फ्लड हैं और हमारे यहाँ पे इतना चैन आराम क्यों है हमारे भी कुछ छोटा मोटा फ्लड होना चाहिए कोई तूफान है ताकि हम घर बैठे भाई
देखिए ये तो वो वाली बात हो गई चैन एक पल नहीं
हाँ।
और कोई हल नहीं
हाँ।
आपका वही हिसाब है
हाँ जी,
सुकून
हाँ जी।
में भी जो है ना
हाँ।
सुकून नहीं चाहिए
नहीं चाहिए यार तो यार देखो ये कितनी कोई बोरिंग लाइफ है आमिर ये कोई लाइफ है यार घर जाओ काम पे आओ घर जाओ काम पे जाओ
भाई
कोई हलचल होनी चाहिए जिंदगी में ना कोई चैलेंजेस होने चाहिए
मैं उनसे कह दूंगा देखिए मैं ये अब आप कह रही हैं कोई लाइफ में हलचल एंटरटेनमेंट नहीं है
हाँ।
लेकिन मैं रेडियो कर सकता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कर रहा हूँ
हाँ।
सीखने की कोशिश कर रहा हूँ
हाँ।
छोटा मोटा एडिटिंग का काम
हाँ।
नाच नहीं सकता मैं सही नाम आपको एंटरटेनमेंट करने
बचपन में टोपी वाले में बड़े नाच रहे थे
यकीन करें मैं अब आप कह रहे हैं आपको एंटरटेनमेंट चाहिए आपको मजा चाहिए उसके लिए मैं ये नहीं कर सकूंगा मैं
अच्छा अच्छा
बाकी सारे काम मैं कर लूंगा अल्हम्दुलिल्लाह
अच्छा अच्छा
लेकिन अब आप कहें यार मतलब ठुमके भी लगाओ तुम क्योंकि आपको एंटरटेनमेंट चाहिए आपको तफरी चाहिए आप बोर हो रही हैं
इसलिए कि तुमने बचपन में तिरछी टोपी वाले पे नाचा था तो तुम जब नाच सकते हो जिसके चर्चे पूरे क्रांची में हुए थे फिर
जमाना है बचपना था
अच्छा तो कोई नहीं अभी भी बचपना ही है अभी कौन सा तुम कोई 70 साल के बूढ़े हो गए हो
नहीं मैं तो कहा मैं तो 40 सीरीज में आ गया मतलब
हाँ हाँ हाँ
40 सीरीज में मतलब 40 का मॉडल हो गया हूँ मैं 40 वाला मॉडल नहीं होता
तो देखो फिर भी कितने थके हुए बैट्समैन हो तुम हमको देखो अगर हम 100 को टच करने वाले हैं
ये देखिए
बड़ा बैट्समैन ऐसा होता है
ये मसला है कि मैंने कम बॉलों पे ये रन बनाए 99 बॉलों पे 100 बनाए मैंने कम टाइम में ये रन बनाए
अच्छा तुम 40 के हो गए हो 20 ईयर्स में
अब आप अच्छा आपकी न्यूज शुरू हो जाएगी मुझे एक वाकया याद आ गया आपको पता है ना दास्तान इकबाल इतनी है क्या क्या सुनाए आप क्या क्या सुनेंगे एक जगह शर्जा जी हम इंटरव्यू करने पहुंच गए ये करंची की बात है मैं चैनल का नाम नहीं लूँ इसको एडिट कर
एडिट कर
मैं जगह इंटरव्यू देने पहुंच गया
अच्छा
अच्छा हमारा एक्सपीरियंस उस वक्त कोई काम करने का होगा को 5 साल का तकरीबन
क्योंकि तुमने तो पैदा होते ही काम शुरू कर दिया था ना
तो 4-5 साल हमें हो गए थे हम काम करते हुए हम इंटरव्यू पे पहुंच गए वहां को चीफ एडिटर वीडियो एडिटिंग जो चैनल्स वगैरह में होते हैं एडिटर उसके लिए मैं इंटरव्यू देने पहुंच गया वहां जो बैठे हुए थे वो एक उस डिपार्टमेंट के हेड बैठे हुए थे वो मेरा इंटरव्यू कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि तुम्हें पता है जो मेरा जो चीफ एडिटर यहाँ पर जो जॉब कर रहा है मतलब हम भी उसी पोजिशन पे अप्लाई करने के लिए जा रहे थे उसका जो है वो 10 साल का एक्सपीरियंस है और तुम 5 साल अभी तुम्हारे काम करते हुए और तुम्हें कैसे लगा कि तुम जो है वो
उस लेवल पे काम कर सकते हो
एडिटर की हाँ। लेवल पर जो है वो तो मैंने उनको बताऊं क्या जवाब दिया वहां मेरी जॉब नहीं की मैंने उनको जवाब क्या दिया और ये बिल्कुल मैं आपको सही मैंने कहा सर अगर कोई चीज उन्होंने 10 साल में हासिल की है और वो मैंने 5 साल में कर
दिया
तो मेरा लेकिन अगर इंटरव्यू करने वो एचआर का बंदा वो मेरी शक्ल देगा
तो ऑब्वियस यानी कि
सर ये कौन सा पैमाना है
हाँ इंटेलिजेंस जो है ना इंटेलिजेंस के लिए आपको 70 साल का होना जरूरी है
तो वही अब वापस आते हैं फ्यूचर वो आपके जो 100 रन है वो 99 पे बने
और तुमने 20 साल में 40 साल के तुम हो गए ओ यस
यू गॉट माई पॉइंट
हाँ बिल्कुल
इंटेलिजेंट
मैं तुम्हें पता नहीं है
आपकी $2 इनकम ज्यादा हो गई
ना हाँ अब देखो मैं कितना जो है मॉर्गेज में बचा लूंगी ढेर सारे मेरे पैसे जो हैं हाँ। साल के एंड पे जो बचेंगे ना मॉर्गेज में हाँ। वो मेरे को
$20 बच रहे हैं
$20 बच रहे हैं ना मेरे भी अब दो बचना शुरू हो जाएंगे तो $24 में इकट्ठे डाउन पेमेंट कर दूंगी उनको
क्या
हैं और कितनी कम हो जाएगी
आपको कितना खुशी थी बोर हो रही थी मसला हल हो गया
मसला
आपकी मॉर्गेज भी पे हो गई
बिल्कुल कितनी कम हो जाएगी साल के आखिर में हर साल अब मैं $24 ज्यादा दिया करूँ
बहुत बचेंगे
ओहो क्या बचेंगे क्या बात है आमिर आज से जो है ना मैं तुम्हें खूबसूरत आदमी मान लेता क्या खूबसूरत सजेशन तुमने मुझे दी है चलो जी चलो ठीक है भाई आमिर साहब कोई काम भी कर लेने हैं तेरियां गल्लां ते कड़ियां ते चलदियां रहनगियां ठीक है जी अच्छा जनाब दिस पार्ट ऑफ द प्रोग्राम इज बीइंग ब्रॉट टू यू बाय पायल ज्वेलर्स और जो है वो اسلم بھائی یہاں پہ کہتے ہیں بڑی زبردست قسم کی ان کے پاس جیولری ہے, تو یہاں سے آئی ہوئی ہے دبئی, سنگاپور, انڈیا, پاکستان, بڑی زبردست ڈیزائنر قسم کی جیولری ہے. تو اگر آپ کو چاہیے تو آپ جا سکتے ہیں 2720 North Park Drive یونٹ 42 برامپٹن میں, اور ان کا نمبر ہے 9057907879. اس کے علاوہ اونٹاریوز لارجسٹ حلال پاکستانی بفے ویلج ٹیسٹ, ان کے جو ہیں دو ریسٹورینٹ ہیں, ایک جو ہے مسز ساگا میں ہے تو آپ وہاں پہ بھی جا سکتے ہیں, اور ایک جو ہے اوکویل میں ہے, مسز ساگا پہ 4141 ڈکسی روڈ پہ ہے, اور ان کا نمبر ہے 9052323663. اور دوسرا جو لیک شور پہ ہے اس کا نمبر ہے 2294 لیک شور روڈ ویسٹ, اور ان کا نمبر ہے 9052262294. اینڈ جناب راجہ تے بادشاہ جی کہتے ہیں میرے پاس آؤ, آپ کو میں رائٹ انشورنس دوں گا اگر آپ کے پاس دو گاڑیاں اور ایک گھر ہے, اور آپ کی انشورنس جو ہے بہت ہی اچھی ہو سکتی ہے, میرے پاس آؤ صحیح آپ ایک بار, آل اسٹیٹ کے ساتھ کام کرتے ہیں, اور ان کا نمبر ہے 6472903773. ٹھیک ہے جی. اچھا جناب, سب سے پہلے تو ہم آپ کو بتا دیں کہ جو ہماری فارن افیئرز منسٹر ہیں میلانی جولی صاحبہ, وہ پہنچی ہوئی ہیں انگلینڈ, اور پہنچی ہوئی تھیں لندن گئی ہوئی تھیں, اور وہاں پہ فار دا فرسٹ ٹائم ان کی ملاقات جو لیبر پارٹی کے نئے کاؤنٹر پارٹ ہیں, ان کے جو فارن سیکرٹری ہیں ان کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی ہے, ڈیوڈ لیمی کے ساتھ لندن کے اندر, اور یہ جو ہیں ان کو یو کے کا سیکرٹری آف اسٹیٹ ابھی لگایا گیا ہے فار فارن کامن ویلتھ اینڈ ڈیولپمنٹ افیئرز کے لیے. لیمی صاحب جو ہیں وہ ان کے ساتھ جو ان کی بات چیت ہوئی ہے اس کے اندر انہوں نے کہا جی کہ ہم جو ہے وہ اپنی سیکیورٹی کے اوپر بات کریں گے, اور اپنی جو یہ ڈیلز ہیں بائی لیٹرل ٹائز جو ہیں ان کو بڑھانے کی کوشش کریں گے. میلانی جولی جو ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے جو ویوز ہیں وہ ٹرانس اٹلانٹک سیکیورٹی اور سپورٹ فار یوکرین جو ہے اس پہ ہونا چاہیے. اس کے بعد ان کی ملاقات جو ہے وہ پیٹریشیا سکاٹلینڈ سے ہوئی تھی, سیکرٹری جنرل ہیں کامن ویلتھ کی, اور پھر اس کے بعد جو ہیں یہ ان سب سے ملاقاتوں کے بعد نشان, آپ یہ میلانی جولی کی پکچر نہیں دکھا رہے ہیں, آپ ٹروڈو صاحب کی دکھا رہے ہیں, تو پلیز آپ اس کو چینج اگر کر سکتے ہیں تو جی اب یہ آپ نے صحیح پکچر دکھائی ہے. تو میلانی جولی صاحبہ جو تھے وہ آج جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ان کی ملاقاتیں ڈیوڈ لیمی کے ساتھ لندن میں تھیں, اور پھر اس کے بعد یہ ملی ہیں پیٹریشیا سکاٹلینڈ کے بعد جو کہ سیکرٹری جنرل آف کامن ویلتھ ہیں. اس کے بعد اب میلانی جولی صاحبہ جو ہیں وہ ڈی سی پہنچ چکی ہیں, کیونکہ وہاں پہ آپ کو ہم نے بتایا ہی تھا کہ نیٹو کا سمٹ چل رہا ہے, تو انہوں نے جوائن کیا ہے ٹروڈو صاحب کو. ٹروڈو صاحب جو ہیں کافی مشکل میں, آپ کو پتا ہے کہ یہ جو نیٹو کا سمٹ شروع ہو گیا ہے اور کینیڈا جو ہے کانسٹنٹلی ڈوج کر رہا ہے یہ کوسچنز کہ بھئی میں جو ہے 2% کیا یہ اپنے جی ڈی پی کا بڑھائیں گے یا نہیں بڑھائیں گے. ٹروڈو صاحب جو ہیں اس وقت جو نیٹو کے سمٹ میں ہیں ان پہ کافی کوسچن کیے جا سکتے ہیں کہ بھئی آپ اپنی یہ ملٹری جو اسپینڈنگ گولز ہے یہ کب آپ بڑھائیں گے, کیونکہ جو اندر کے سورسز ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ 32 ممبر الائنس جو ہے یہ بہت زیادہ فرسٹریٹ ہوتی جا رہی ہے ٹروڈو صاحب کے ساتھ, اور جو ہے یہ اٹوا جو ہے وہ کانسٹنٹلی کہہ رہا ہے کہ جی میں کروں گا لیکن کوئی بھی وہ کر نہیں رہے ہیں اپنا ٹارگیٹ یہ پورا, اور لوگ ان کو وارن کر رہے ہیں ایلائز اور امریکہ میں خاص طور پہ کہ اگر ٹرمپ صاحب آگے تو آپ کے لیے مشکلات جو ہیں وہ اور بھی زیادہ بڑھ جائیں گی. یورپینز جو ہیں وہ اب کریٹیسائز بلکہ کر رہے ہیں کہ آپ ہمارے اوپر زور لگاتے ہو, لیکن واشنگٹن جو ہے وہ بالکل زور نہیں دیتا ہے ٹروڈو صاحب کو یا کینیڈا کو کہ یہ اپنا جو ہے پلیج جو کہ انہوں نے 2014 میں سائن کیا تھا کہ 2% آف جی ڈی پی جو ہے ڈیفنس پہ لگایا جائے گا, اور یہ سائن اس وقت انہوں نے ساری نیٹو کی ممبرز نے کیا تھا جس وقت پوٹن صاحب نے یوکرین کا جو کریمیا کا ایریا تھا اس کو انہوں نے سیز کر لیا تھا. 23 of 32 نیٹو ممبرز جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ وی ول ہٹ دا مارک, 2 جو ہولڈ آؤٹس ہیں وہ صرف کینیڈا اور بیلجیم ہیں, لیکن پھر بھی بیلجیم نے پھر بھی کہہ دیا کہ بائی 2035 اپنے جی ڈی پی کا 2% یہ اسپینڈ کریں گے. کینیڈا ابھی بھی نہیں کہہ رہا ہے کہ وہ کب کریں گے. جو پولیٹیکل اینالسٹ ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر کینیڈا کو بہت زیادہ زور دیا گیا کہ آپ کو ڈیفینس سپینڈنگ بڑھانی پڑے گی یا آپ سوشل پروگرامز کو بڑھائیں گے یا ٹیکسز کو ریڈیوس کریں گے, تو لوگ ان کو یہی مشورہ دیں گے کہ ڈیفینس جو ہے وہ لاسٹ میں آتا ہے. تو ایز اے ریزلٹ کیونکہ کینیڈین گورنمنٹ کو کوئی بھی پولیٹیکل گینز نہیں ہے اس چیز سے, تو اس لیے وہ اس کے لیے پلیج نہیں کر رہے ہیں. ابھی مئی کے مہینے میں بہت ہی ایک عجیب واقعہ ہوا تھا, 23 US سینیٹرز جو تھے, بڑا یہ ریئر اسٹیپ ہے, ایسے کرتے نہیں ہیں وہ, لیکن انہوں نے ٹروڈو صاحب کو ایک لیٹر لکھا تھا, اور انہوں نے ٹروڈو صاحب کو کہا تھا جی کہ ہم بہت زیادہ ڈس اپوائنٹڈ ہیں کہ آپ جو ہے اپنا ابھی تک یہ 2% کا ٹارگیٹ جو ہے پورا نہیں کر رہے ہیں, اور ہمیں لگ رہا ہے کہ اس ڈیکیڈ میں یعنی کہ اس 10 سال کے اندر تو کینیڈا یہ ٹارگیٹ کر بھی نہیں سکے گا. تو اب یہ جو سمٹ ہے डीसी में इसमें कनाडा के ऊपर काफी प्रेशर अमेरिका की तरफ से भी जो है वो आ सकता है। ग्रीन पार्टी के जो डेप्टी लीडर हैं जोनाथन पेडनॉल, वो अब जो हैं, जो कि बहुत क्लोजली काम कर रहे थे लीडर एलिजाबेथ मे के साथ ग्रीन पार्टी में, उन्होंने आज रिजाइन कर दिया है और उन्होंने कहा जी कि मेरे अपने खुद के पर्सनल रीजंस हैं। उन्होंने कहा जी इट वाज एन ऑनर टू सर्व बिसाइड मे, और वैसे तो इनकी अपनी कोई पार्लियामेंट के अंदर सीट नहीं है, लेकिन जिस वक्त जो 2021 के जो फेडरल इलेक्शंस हुए थे उसके बाद जो था, इन्होंने कहा था कि जी एक मे ने ही कहा था, एलिजाबेथ मे ने, कि एक लीडरशिप मॉडल होना चाहिए। पार्टी ने 2022 में जो लीडरशिप रेस हुई थी उसमें इन दोनों को चूज किया था टू लीड द पार्टी अंडर द पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन आज इन्होंने रिजाइन किया और उन्होंने कहा जी मुझे बड़ी खुशी है कि मैंने पार्टी को एलिजाबेथ मे के साथ रीबिल्ड किया और उसकी बेस स्टेबलाइज की, लेकिन अब मैं और ज्यादा कंटिन्यू नहीं रख सकूंगा। एलिजाबेथ मे ने इस मौके पर बात करते हुए कहा कि उनको इस चीज का बहुत ज्यादा अफसोस है कि वो छोड़ के जा रहे हैं। अलबत्ता उन्होंने कहा जी कि वैनकूवर आइलैंड की जो उनकी राइडिंग है उससे वो नेक्स्ट इलेक्शंस में प्लान करती हैं फाइट करने का। तो ये आज काफी मेजर जो थी वो चेंज आई है ग्रीन पार्टी के अंदर। ट्रांस यूनियन कनाडा का एक नया सर्वे आया है। इस नए सर्वे के मुताबिक जो कैनेडियंस हैं वो बहुत ही लेस ऑप्टिमिस्टिक हैं कि उनके फाइनेंसेस और उनकी जो उनके क्रेडिट कार्ड के बिल्स और उनके जो इन्फ्लेशन और जो बाकी की चीजें हैं वो इम्प्रूव कर सकती हैं। बल्कि बहुत सारों ने तो कहा है कि जो कनाडा है उसके अंदर मिड ईयर में रिसेशन भी आ सकता है। ये जो ट्रांस यूनियन ने सेकेंड क्वार्टर का 2024 का स्टडी किया है उसमें 57% कैनेडियंस ने कहा है कि उनकी जो इनकम्स हैं वो ये जो करंट इन्फ्लेशन है उसका मुकाबला नहीं कर सकती, यानी कि उनकी इनकम कम है टू मैच विद द करंट इन्फ्लेशन। 38% ने कहा कि हम अपने बिल्स भी पे नहीं कर सकेंगे, ना तो लोन्स दे सकेंगे इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स, और वो कहते हैं जी इसीलिए हमने अपनी तमाम चीजें जो बाहर का खाना पीना घूमना फिरना सब खत्म करके अपना एक इमरजेंसी फंड है उसके अंदर हम जो भी थोड़े बहुत पैसे बचते हैं उसमें डाल रहे हैं, और हम जितना ज्यादा क्रेडिट यूज कर सकते हैं क्रेडिट कार्ड्स के थ्रू वो हम यूज कर रहे हैं, और अपना जो रिटायरमेंट सेविंग प्लान है उसमें एडजस्टमेंट्स लेके आ रहे हैं। 46% हाउस होल्ड ने कहा कि हमारे फाइनेंसेस जो हैं उनका बहुत ज्यादा बेड़ा गर्क हो गया है इस साल के अंदर, यानी कि बहुत ही मेस्ड अप में वर्स होते जा रहे हैं, विच इज 4 percentage points अप फ्रॉम लास्ट ईयर। ये जो था सर्वे, ये 1000 कैनेडियन एडल्ट्स का किया गया था बिटवीन May 1 to 10। इसमें से 4 in 5 जो थे उन्होंने कहा जी कि हमारी इनकम तो सेफ है सेम है, और कुछ ने कहा था कि शायद हमारी थोड़ी बहुत पिछले 3 महीनों में थोड़ी सी बढ़ी है, और 58% ने कहा कि हमको बिल्कुल उम्मीद नहीं है कि हमारे फाइनेंसेस इन द नेक्स्ट 12 मंथ्स बेहतर होंगे। 2/3 ने कहा कि कनाडा के अंदर रिसेशन है या कि इस साल के आखिर तक आ जाएगा। 86% ने कहा कि इन्फ्लेशन जो है वो हमारा वन ऑफ द 3 top concerns है फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ्स। स्टैट्स कनाडा की भी हमने आपको खबर सुनाई थी लास्ट वीक जिसमें कि उन्होंने कहा था कि इन्फ्लेशन ऊपर गई थी मई के महीने में 2.9% को फ्रॉम 2.7% इन अप्रैल, और ग्रोसरी की प्राइसेस जो थी इंक्रीज की थी 1.5% से ईयर ऑन ईयर। सो जो हालात हैं यहां पे काफी खराब हैं। अच्छा जनाब, हरिकन जो ये है बैरल, इसके जो अब बाकी आप जिसको रेमिनेंट्स कहते हैं जो थोड़ा बहुत बच गया है, ये खतरनाक किस्म का Category 3 का हरिकेन, ये अब GTA के अंदर आ रहा है, लेकिन GTA में ये तूफान नहीं लाएगा, सिर्फ हल्की फुल्की बारिशें या कहीं कहीं ज्यादा भी बारिशें आ सकती हैं, और ये बारिशें कुछ लोकेशन पे 50 मिलीमीटर को एक्सीड करेंगी, कुछ जगहों के ऊपर जो है ये 20 से 40 मिलीमीटर पर आवर आएंगी। इसके साथ विंड्स जो हैं आज रात 20 किलोमीटर पर आवर पे चलेंगी और कल 30 किलोमीटर पर आवर के ऊपर चलेंगी। टोरंटो के अंदर तो जो है अभी भी हीट वार्निंग है, और आज टेम्परेचर जो है वो 30 डिग्रीज था, लेकिन इट वाज फीलिंग लाइक 38 डिग्री सेंटीग्रेड ह्यूमिडिटी के साथ। इसी तरह जो स्टॉर्म है उसके बारे में कहा जा रहा है कि जब वो आएगा यहां पे GTA में तो शायद ये जो इतने हाई टेम्परेचर्स हैं जिसके बारे में कहा जा रहा है कि 23 डिग्रीज कल भी रहेगा, शायद वो टेम्परेचर्स कम आ जाए। एनवायरमेंट कनाडा जो है वो कहते हैं जी कि हमको डिफिकल्ट है पिन पॉइंट करना कि ये सिस्टम एग्जैक्टली किस जगह को GTA में हिट करेगा, लेकिन फिर भी ये आ रहा है और आएगा और हैवी बारिशें या वर्षें लाएगा आज भी, आज रात भी और कल वेंसडे के दिन भी लाएगा। लेकिन अच्छी बात यह है जैसे कि हमने अभी बताया कि टेम्परेचर्स इससे नीचे आएंगे। लो जी एक और से आपा पै गया। एलसीबीओ को हमने आपको बताया था ना लास्ट वीक कि वो कह रहे थे कुछ लोकेशन हम खोल देंगे जिसमें आप अपनी ऑनलाइन डाल सकते हैं रिक्वेस्ट और आपको होम डिलीवरी फी दी जाएगी। लो जी आज उन्होंने कहा कि नहीं जी नहीं, हम अपना स्क्रैप कर रहे हैं, ये जो टेम्परेरली हम रीओपन 5 स्टोर करना चाह रहे थे फॉर बार्स एंड रेस्टोरेंट्स टू बाय अल्कोहल ड्यूरिंग स्ट्राइक। और उन्होंने क्राउन कॉर्पोरेशन ने कहा जी क्योंकि हमको यूनियन ने थ्रेटन किया है कि अगर आपने ये लोकेशन जो है ये खोले तो इन लोकेशंस के बाहर हम स्ट्राइक करेंगे। तो ये जो इन स्टोर शॉपिंग है वो कह रहे हैं कि हम अब ऑफर नहीं कर सकेंगे। ये जो 5 स्टोर के लोकेशन से ये उन्होंने कहा था कि जुलाई 10 को हम खोलेंगे ताकि इन स्टोर शॉपिंग आप कर सकें, लेकिन चूंकि ओपीएसईयू जो कि यूनियन है उसने थ्रेटन किया है टू पिकेट, तो इसलिए अब हम नहीं कर सकते। लेकिन उन्होंने कहा जी कि हम कोई अल्टरनेटिव ऑनलाइन एक्सपीरियंस जो है वो एक्सप्लोर करेंगे, उसकी डिटेल्स आपको जो है लेटर ऑन दी जाएंगी। न्यूयॉर्क टाइम्स की जनाब ये स्टोरी है और इसके मुताबिक कुछ एक्सपर्ट्स जो हैं उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स से बात की है, यानी कि जो मिलिट्री एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने, और उसके मुताबिक रशिया अब और ज्यादा यूक्रेन के इलाके फतह नहीं कर सकेगा, जिसको कह रहे हैं कि सिग्निफिकेंट टेरिटोरियल गेन्स अब आने वाले मंथ्स में नहीं ले सकेगा। रशिया जो है वो कहते हैं जी उसके बारे में कि वो बहुत ही पुअरली ट्रेंड उसके फोर्सेज हैं और यूक्रेन के डिफेंसेस भी कोई इतने अच्छे नहीं हैं, लेकिन यूक्रेन जो है वो री एनफोर्स कॉन्स्टेंटली हो रहा है वेस्टर्न म्यूनिशन से जो कि बहुत ही एडवांस है, तो उसकी वजह से शायद रशिया आगे ना बढ़ सके। माइकल कॉफमैन जो कि सीनियर फेलो हैं इन रशिया और यूरेशिया प्रोग्राम में एट कार्नेगी एंडाउमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस, उन्होंने उनका कहना है कि मेजर रशियन ब्रेक थ्रूज जो हैं अब अनलाइकली हैं। इसके साथ साथ दूसरे एक्सपर्ट जो हैं एरिक सिरामेला फॉर्मर इंटेलिजेंस ऑफिसर है, उन्होंने भी कहा जी कि रशिया और यूक्रेन जो हैं उनके पास इतनी कैपेबिलिटीज नहीं है कि वो बैटल लाइंस को चेंज कर सकते हैं। रशियन फोर्सेज जो हैं अलबत्ता वो कॉन्स्टेंटली आगे बढ़ रही हैं ईस्टर्न यूक्रेन के अंदर, और उन्होंने मिलिट्री ने रशिया की ने क्लेम भी किया है कि एक स्मॉल विलेज वेस्ट ऑफ अडिवका जो है उन्होंने उसका कंट्रोल ले लिया है। लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि आने वाले दिनों में इस वॉर को कंटिन्यू रखना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। हैरट्स आपको पता है कि इसराइल का सबसे बड़ा न्यूज़पेपर है। हैरट्स के मुताबिक यूएस और बाकी के जो मीडिएटर्स हैं लाइक कतर वो अब वेट कर रहे हैं इसराइली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू का, जो उन्होंने अपनी रेड लाइंस दे दी हैं कि भाई हम ये होएगा तो ही हम जो है आपके साथ डील में जाएंगे। आपको पता ही है कि कई दफा एंथनी ब्लिंकन साहब जो है कतर आए हैं और कतारी अमीर से मिले हैं और इन दोनों ने बातचीत की है कि कैसे ये वॉर जो गाजा के अंदर चल रही है इसको रोका जाए, लेकिन ये जो सारा प्रपोजल दिया गया था इनकी तरफ से इजिप्ट यूएई कतार और यूएस ने ये जो प्रपोजल दिया था उसको नेतन्याहू ने बिल्कुल ही ना कह दिया। तो निगोशिएटर्स जो है अब वेट कर रहे हैं मोसाद के जो चीफ हैं डेविड बर्निया उनसे सुनने के लिए कि उनके साथ जो मुलाकातें की हैं नेतन्याहू साहब ने उसमें उन्होंने कितनी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई है और क्या ये जो है सीज फायर और हॉस्टेज एक्सचेंज की बातों को आगे लेके जाया जा सकता है या नहीं। नेतन्याहू साहब ने कहा था कि ठीक है हम डील करने को तैयार हैं, लेकिन हम जो है जैसे ही ये डील हो जाएगी और आप हमारे हॉस्टेजेस वापस कर देंगे हम ऑफेंसिव फिर से रिज्यूम कर देंगे जब तक कि हमारा गोल जो है वो पूरा नहीं होएगा, जिसमें कि हमास के ऊपर उन्होंने एलिगेशन लगाए हैं कि वो इजिप्ट से जो आर्म्स स्मगल करके लाता है और थाउजेंड्स ऑफ अलेजली टेररिस्ट वहां से आते हैं गाजा के अंदर, और जो है फिर हम जिस वक्त तक हमास को पूरी तरह से खत्म नहीं कर लेंगे उस वक्त तक हम ये जंग जारी रखेंगे। तो जाहिर है कि अगर आपने यही करना है ट्रूस के बाद भी तो फिर तो जाहिर है हमास आपसे नहीं मानेगा। हमास ने कहा है कि ये जो इस तरह की जो स्टेटमेंट्स हैं उसके बाद तो जाहिर है कि हॉस्टेज और सीज फायर डील जो है वो नहीं की जा सकती है। एक सोर्स जो है उसने हैरट्स न्यूज़पेपर को बताया है कि प्रॉब्लम जो है नेतन्याहू के साथ वो ये है कि वो उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो ये डील कैसे करें। जाहिर है कि कैजुअल्टीज उनकी तरफ भी हो रही हैं, हॉस्टेजेस के लिए लोग इसराइल में भी बहुत ज्यादा शोर मचा रहे हैं, लेकिन उनके लिए मसला ये है कि अगर उन्होंने ये डील कर ली तो फिर वो गवर्नमेंट में नहीं रहेंगे, तो यानी अपनी कुर्सी बचाने के लिए वो हजारों ही मासूम जो गाजा के अंदर लोग मर रहे हैं उनके मरने दे रहे हैं उसकी उनको कोई भी परवाह नहीं है। और वो जो है सीआईए के जो चीफ हैं विलियम बर्न्स वो दोहा में पहुंचे हुए हैं और वो भी मुलाकातें कर रहे हैं कतारी प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद अल थानी के साथ, और ये बातचीत चल रही है। इसके बीच में जो इसराइल की वॉर ऑन गाजा है जी, उसके अंदर एक नए सर्वे के मुताबिक जो डेथ टोल है 186,000 को वो टच कर रही है। ये जो नई जो डिटेल्स हैं, ये लैंसेट जो न्यूज़पेपर है, जर्नल है, उसने ये बताया है, जो कि रिप्रेजेंट करती है 8% ऑफ गाजाज प्री वॉर पॉपुलेशन ऑफ 2.3%। अभी तक जो मीडिया में रिपोर्ट्स आई हैं उसके मुताबिक 38,000 पैलेस्टीनियंस को इसराइल ने अपने ऑफेंसिव में मारा है सिंस अक्टूबर 7। लैंसेट के मुताबिक ये जो ऑफिशियल फिगर्स होती हैं, ये जो सिर्फ लाशें जो उनको मिलती हैं उसका वो आंकड़ा देते हैं, लेकिन अभी थाउजेंड्स ऑफ लोग जो हैं रबल के नीचे हैं और इनडायरेक्ट डेथ्स जो कि हेल्थ फैसिलिटीज में हो रही हैं, या कि फूड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की वजह से हो रही हैं, या कि पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर ना होने की वजह से हो रही हैं, उनके बारे में गाजा की हेल्थ मिनिस्ट्री या कि दुनिया जो है वो बात नहीं कर रही है। तो वो कहते हैं जी कि ये जो इनडायरेक्ट डेथ्स हैं ये 3 to 15 times मोर हैं कंपेयर टू डायरेक्ट डेथ्स। तो यानी कि लैंसेट का ख्याल है कि अभी तक 186,000 जो गाजन्स हैं उनकी डेथ हो चुकी है। इट इज नॉट द नंबर इज नॉट 38,000। तो बहुत ही बहुत ही बहुत ही जो है ज्यादा अफसोस की बात है। अच्छा जी, दिस पार्ट ऑफ द प्रोग्राम इज बीइंग ब्रॉट टू यू बाय चांदनी विक्टोरिया बैंक्वेट हॉल। इसमें 1400 या बंदों की फैसिलिटी है। टाई बंदा आप अपने बिल्कुल शौक से और प्यार से बुला सकते हैं। आपको पता ही है वो टाई बंदा कौन है जी, तो आप बुलाएं। दे आर लोकेटेड एट 2935 ड्रू रोड मिसिसागा पे। और आपका कोई भी वेडिंग का सेरेमनी है या कि लॉज कोई गैदरिंग है तो आप इसके 32-room लग्जरी होटल में करा सकते हैं। इनके बड़े जबरदस्त जो हॉल्स हैं खूबसूरत किस्म के बहुत ज्यादा है। यहां पे इंडियन पाकिस्तानी वेस्ट इंडीज फूड मिलता है। इनका नंबर है 6479653823। एंड जनाब डॉक्टर फियाज कुरैशी बहुत ही जबरदस्त किस्म के डॉक्टर हैं। 3 इनके क्लिनिक्स हैं, 2 मिसिसागा में हैं और 1 स्कॉर्ब्रो में है। तो मिसिसागा में आपको जाना है तो आप कॉल कर सकते हैं 9052325678, और अगर आपको स्कॉर्ब्रो में जाना है तो आप जा सकते हैं 4167579999 पे आप जा सकते हैं। और जनाब हमारे जो हैं वो सुल्तान भाई आपको पता ही है ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेज पे होते हैं। बड़े खूबसूरत इनके पास अप्लायंसेज हैं और जो मार्केट है उससे कम प्राइस पे है। 801 बोवे ड्राइव वेस्ट पे होते हैं। इनका नंबर है 9054502828। ओके जनाब, आज थी 9th of July को आज पाकिस्तान ने ऑब्जर्व किया 57th डेथ एनिवर्सरी ऑफ फातिमा जिना, हु वॉज द सिस्टर ऑफ मोहम्मद अली जिना, जो कि पाकिस्तान के फाउंडर थे, जो कायद का मसोलियम था, वहां पे कुरान के रेसिटेशन जो हैं उससे दिन आज शुरू हुआ था। और ये इवेंट जो था ऑर्गेनाइज किया था कायद आजम मैनेजमेंट बोर्ड ने, जिसके के अंदर मसोलियम का स्टाफ था, पाकिस्तान नेवी के पर्सनल थे, बहुत सारे जो कराची के सिटीजन थे वो भी यहां पर आए हुए थे। कारी मोहम्मद शमसुद्दीन जो थे उन्होंने प्रेयर्स को लीड किया और लोगों ने जो फातिमा जिना का रोल था अपने भाई के साथ इन क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान उसको बहुत जो है होमेज दिया, और उनकी जो कॉन्ट्रीब्यूशन थी पाकिस्तान मूवमेंट के लिए और इनकी जो एंड्योरिंग लेगेसी थी उसके लिए ऊपर भी बात की। इसके अलावा जो उन्होंने सेक्रीफाइसेस की और उनकी जो डेडिकेशन थी फॉर पाकिस्तान इंडिपेंडेंस एंड डेवलपमेंट उसके ऊपर आज लोगों ने बात की। तो फिर भाईजाना आपने बहुत ही अच्छा किया फातिमा जिना के साथ, उनको अनफॉर्चुनेटली उनको गालियां भी दी, बुरा भला भी कहा, उनके साथ बेईमानी की, उनको इलेक्शन में हराया, तो अब आप उनको याद करके क्या कर रहे हैं? मतलब रहने दें आप लोगों को किसी की इज्जत नहीं करनी आती। इस कौम को सिर्फ मौलवी ने यह सिखा दिया है कि ये जायज है और ये नाजायज है। ह्यूमैनिटी तो अपने कौम को सिखाई नहीं है कि लोगों के साथ मोहब्बत कैसे करनी है, लोगों के साथ कंपैशनेटली पेश कैसे आना है, लोगों के साथ इज्जत से कैसे पेश आना है। कितनी आप लोगों के साथ बदतमीजी करते हैं, झूठ बोलते हैं और आपको लगता है कि हम बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, तो जो है कितना झूठ बोल के और इलेक्शंस में रिगिंग करके इनको हराया और फिर इनके बारे में गंदी बातें भी की, तो अब याद करेंगे तो क्या फायदा। महाराज जी, आज पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने अनाउंस किया है कि 50 बिलियन रुपीज के इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर्स जो हैं जो कि यूज करते हैं 200 यूनिट सिर्फ, उनको जो है वो सब्सिडी दी जाएगी। और वैसे तो आईएमएफ की कंडीशंस के मुताबिक जो इलेक्ट्रिसिटी के जो टैरिफ्स हैं वो बेतहाशा इंक्रीज कर दिए गए हैं, लेकिन आज शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि पब्लिक आउटक्राई जो है उसको देखते हुए जो लोग सिर्फ 200 यूनिट यूज करते हैं वो जुलाई अगस्त और सितंबर के महीनों में जो है उनको सब्सिडी दी जाएगी। और इसके अंदर जो के इलेक्ट्रिक के जो कंज्यूमर्स हैं वो भी शामिल हैं, जिसकी वजह से आप अब अगर इस ब्रैकेट में आते हैं तो 4 से 5 रुपए पर यूनिट सिर्फ ये लोग जो है ये बिजली देंगे। नेशनल एक्सचेकर को तो बहुत भारी नुकसान होएगा, लेकिन वो कहते हैं जी आम आदमी जो है उसको काफी रिलीफ मिलेगी। उन्होंने कहा जी कि कोलिशन गवर्नमेंट जो है वो बड़े डिफिकल्ट मरले से गुजर रही है, लेकिन हमारा सबसे बड़ा मसला जो है वो करप्शन को कम करना है। भाईजान, करप्शन को कम कौन करेगा? आपके तो जो एलाइज हैं उनके बीच में और खुद आपके अपने फाइल्स में कितने करप्ट लोग हैं, तो कौन करप्शन कम करेगा? आपने तो करनी है, तो आप तो करना चाहते नहीं हो। तो जी हम करप्शन कम करेंगे तो इस मुल्क के मसले हल हो। तो भाईजान ये तो दुनिया, ये तो एक 5 साल के बच्चे को भी पता है कि पाकिस्तान का मसला जो है करप्शन है। तो मतलब आपने नई बात क्या की है एज पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर? अगर आपको सोल्यूशन देते कि हाँ मेरी पार्टी में भी या एलाइज के अंदर भी जो जो करप्ट है उससे पैसा भी निकाला जाएगा और उसको सजाएं भी दी जाएगी, हाँ ये फिर नई बात होती। लेकिन ये कह देना पाकिस्तान का मसला करप्शन है, भाईजान ये तो सबको पता है। तो ये तो आपने कोई ऐसा बड़ा ज्ञान नहीं दिया आपने। अच्छा जी, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने आज मुलाकातें कर रहे थे वो जो है यूएनएचसीआर के जो कमिश्नर हैं फिलिपो ग्रैंडी के साथ पीएम हाउस में, और उसमें उन्होंने कहा जी कि अफगान रेफ्यूजीज का जो बर्डन है वो उसको उठाने की रिस्पांसिबिलिटी इंटरनेशनली भी है। उन्होंने कहा जी कि हमने अभी, आपने आपको पता ही है कि गवर्नमेंट ने रिपेट्रिएशन अनाउंस की थी फॉर अनडॉक्यूमेंटेड एलियंस इन नवंबर लास्ट ईयर, क्योंकि उन्होंने कहा जी कि हमारे मुल्क में बहुत ज्यादा सिक्योरिटी के मसले पैदा हो गए हैं और इन सब लोगों को अब वापस जाना चाहिए क्योंकि ये लोग जो हैं हमारे मुल्क के अंदर अब टेररिस्ट अटैक्स कर रहे हैं, तो हर कोई बंदा जो पाकिस्तान में आएगा वो डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर लेकर आएगा। उसी सिलसिले में ये आज फिलिपो ग्रैंडी के साथ बात कर रहे थे। उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान ने फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम ये जो अफगान रेफ्यूजीज को अपने पास रखा है, लेकिन पाकिस्तान के पास अपने जो रिसोर्सेज है बेताशा कम है। पाकिस्तान के अंदर सोशियो इकोनॉमिक चैलेंजेस और सिक्योरिटी के थ्रेट्स जो हैं वो पैदा हो गए हैं, तो इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है इनके लिए हमें रिसोर्सेज भी दे और इनका इश्यू जो है वो भी जो है वो उसको उठाए और उसको समझे और उसको सीरियसली ले और इनको सेफली और डिग्निफाइड तरीके से अपने मुल्क में वापस भेजा जाए या इनको रीलोकेट किया जाए एक थर्ड कंट्री के अंदर, बिकॉज अनफ इज अनफ। पाकिस्तान जो है अब इतना ज्यादा बड़े नंबर में रिफ्यूजीज का बोझ नहीं उठा सकता है। ये इसमें जी डेप्यूटी जो प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर हैं इसहाक डार साहब, उन्होंने भी कहा जी कि चाहे चाइनीज जो सिटीजन्स हैं उनके ऊपर हमला है या कि हमारे जो लोगों के ऊपर हमला है, हमने बड़ी दफा अफगान गवर्नमेंट को बोला है कि पाकिस्तान के अंदर टीटीपी जो है वो सारा वक्त अटैक्स कर रहा है, हमारे मुल्क में सिक्योरिटी के इश्यूज कर रहा है, हमारा जो नेबरहुड है, हमें जो कंट्री है नॉर्थ वेस्ट में यानी कि अफगानिस्तान, हमने उसको बड़ी दफा कहा है कि वहां से लोग हमारे केपी में और बलूचिस्तान के अंदर जो कि बॉर्डर जिनके अफगानिस्तान के साथ लगते हैं वहां से मिलिटेंसी जो है बेतहाशा आ रही है। जब से तालिबान इन पावर आए हैं 2021 में कंसिस्टेंटली पाकिस्तान के ऊपर जो है क्रॉस बॉर्डर अटैक्स हो रहे हैं और कोई भी आपने फैसला इसके ऊपर नहीं लिया है कि ये जो मिलिटेंट्स आपकी सॉइल से ऑपरेट कर रहे हैं इनको कैसे रोका जा सकता है। वो कहते हैं जी हमारा अफगानिस्तान हमारा भाई है, हम उसके साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं और वैसे भी आप अपने जो नेबर्स हैं उनको आप चेंज तो कर सकते नहीं है, लेकिन हमने जो अफगान गवर्नमेंट है वहां से टीटीपी वालों ने ये जो भी चाइनीज नेशनल्स पे दासू में अटैक किया था ताकि पाकिस्तान और चाइना के ताल्लुकात खराब हुए और जो सेकंड क्वार्टर में पाकिस्तान के अंदर विटनेस की गई है वायलेंस जिसमें के 380 लोगों की डेथ्स हुई है, 220 इंजर्ड हुए हैं जिसमें के सिविलियंस थे, सिक्योरिटी पर्सनल थे और कुछ टेररिस्ट भी थे जिसमें कि उन्होंने 240 टेरर अटैक्स किए थे और फिर काउंटर टेरर ऑपरेशन हुए थे, तो उसमें पाकिस्तान का बेतहाशा नुकसान होता है। ही वॉज स्पीकिंग एट द फर्स्ट मीटिंग ऑफ सेनेट स्टैंडिंग कमेटी ऑन फॉरन अफेयर्स विच वॉज चेयर्ड बाय इरफान सिद्दीकी और इसके अंदर फॉरेन सेक्रेटरी मोहम्मद साइरस सज्जाद काजी जो थे वो भी मौजूद थे। तो उन्होंने आज अफगानिस्तान को फिर से कहा कि मैं बहुत जल्द आपके लीडर्स के साथ मिलने के लिए आ रहा हूं, लेकिन आपको ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म रोकनी पड़ेगी। ठीक है जी, ऐसे सुप्रीम कोर्ट का जो रिजर्व्ड वर्डिक्ट था ऑन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की प्ली के ऊपर अगेंस्ट पिशावर हाईकोर्ट वर्डिक्ट, उसको अप होल्ड किया था ईसीपी ने और इनको डिनाई की थी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को रिजर्व सीट, उसका आज वर्डिक्ट जो था वो उन्होंने रिजर्व किया है क्योंकि दोनों तरफ की वो बात सुन रहे थे। 13 मेंबर जो फुल बेंच है विच वाज लेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा वो आज हियरिंग सुन रहे थे। बैरिस्टर सलमान अकरम राजा जो हैं और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के फैसल सिद्दीकी ने आर्ग्यूमेंट्स दिए। एसआईसी के जो लॉयर थे उन्होंने कहा कि ईसीपी का डिसीजन टू एलोकेट रिजर्व सीट्स टू बलूच अवामी पार्टी वॉज इन अकॉर्डिंग्स विद लॉ, लेकिन ईसीपी जो है वो अपने खुद से डिसीजंस ले रही है एज इफ ये जो है इशू एग्जिस्ट ही नहीं करता है। और काउंसलर जो थे उन्होंने पूछा कि जिस पार्टी ने 18 सीट्स जीती हैं उनको आपने एलोकेट किए हैं 30 रिजर्व सीट्स, तो ये कैसे पॉसिबल है। इसके ऊपर बात करते हुए चीफ जस्टिस ईसा ने कहा कि वाकई इसमें तो कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि ऐसी लॉजिक जिसमें कि जिस पार्टी ने 18 सीट जीती है उनको 30 रिजर्व सीट दी जाए, तो फिर जिस पार्टी ने कोई भी सीटें नहीं जीती थी, यानी कि ये जो गवर्नमेंट अभी बैठी हुई है उसके बारे में वो गुस्से होकर बोल रहे थे कि जिन्होंने कोई भी सीटें नहीं जीती हैं तो उनको फिर आपने कैसे पार्लियामेंट के अंदर बिठाया हुआ है। एसआईसी के जो चीफ थे हामिद रजा, उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स जो थे वो सारे डाले थे कोर्ट के अंदर, जिसमें कि पता चल रहा था कि उनकी अफिलिएशन पीटीआई के साथ है और पीटीआई को रिजर्व सीट्स के ऊपर जो है कोटा मिलना चाहिए था। सिद्दीकी ने कहा था कि रिजर्व सीट्स जो है उनको एलोकेट किया जाए एसआईसी को पार्लियामेंट के अंदर। बैरिस्टर राजा जो थे उन्होंने कहा जी कि पीटीआई के जो कैंडिडेट्स थे वो इंडिपेंडेंट थे और उनको इंडिपेंडेंट करार दिया था ईसीपी ने, तो ये ईसीपी ने सारा जो है ये प्रॉब्लम क्रिएट किया था, हालांकि हमने अपने तमाम जो कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स थे कोर्ट में डाले थे। इसके ऊपर फिर जस्टिस मिनल्ला जो है वो भी बहुत गर्म हो गए, उन्होंने कहा कि ईसीपी यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है इट फेल टू फुलफिल इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, और उन्होंने ये कोशिश की है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर प्रॉपर रिकॉर्ड्स ना दिए जाएं। और जो एसआईसी जो थी वो ऑलरेडी पीटीआई की नॉमिनी पार्टी थी, लेकिन क्योंकि आपने जो है ऑलरेडी जो इनका जो बैट जो कि इलेक्टोरल जो सिंबल था उसको आपने हटा दिया था और लोग कंफ्यूज थे कि किसको हमको वोट देना है, तो वोट लोगों ने ये मसला, उन्होंने अतर मिलना ने कहा कि ये मसला रिजर्व सीट्स का या गवर्नमेंट में बैठने का नहीं है, ये मसला है कि लोगों ने वोट किसको दिया है। लोगों ने वोट एक सर्टन पॉलिटिकल पार्टी को दिया है, तो लोगों के वोट की इज्जत होनी चाहिए। आप जो है पूरे का पूरा इलेक्टोरल प्रोसेस ऐसे किक आउट नहीं कर सकते हैं, और ये उनका राइट है लोगों का कि वो किसको वोट देते हैं और फिर वो किसको पार्लियामेंट के अंदर लेके आते हैं। तो इस तरह की ग्रॉस जो है वो एनोमलीज होंगी तो कोर्ट्स जो हैं उस पर खामोश नहीं बैठ सकती हैं। आप चाहते हैं कि जो लोगों का राइट है इस मुल्क में वो वायलेट होता रहे और कोर्ट्स चुप रहे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। इसके ऊपर फिर जस्टिस वहीद भी बोले और उन्होंने भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के रोल को जो है क्वेश्चन किया। उन्होंने कहा आपका रोल सिर्फ फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाना है, ये इस तरह की सारी जो है, मतलब कहने का मतलब यह था ये जो बंदरबाड़ा आपने किया ये आपका इसमें कुछ हाथ नहीं होना चाहिए था। बहरहाल जी आज कोर्ट ने कुछ तो शायद बात की है, शायद कुछ सा आता जा रहा है कोर्ट के अंदर, शायद जुडिशरी हमारी ठीक हो जाए, देखेंगे आने वाले दिन में। फेडरल कैपिटल जो है कैबिनेट जो है जी उसने आज एक इंतहाई खतरे में नाक काम किया है और फिर से आईएसआई को दे दी है ये अथॉरिटी कि वो पाकिस्तान के अंदर किसी के भी एसएमएस मैसेजेस, किसी के भी सोशल मीडिया अकाउंट्स, किसी के भी फोन कॉल्स जो हैं वो ट्रेस कर सकते हैं। और उसका रीजन उन्होंने दिया जी कि हम क्रिमिनल्स को पकड़ना चाहते हैं एंड दिस इज इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। कैबिनेट ने ये जो अप्रूवल है इसकी समरी जो है वो भेज दी थी गवर्नमेंट को और उन्होंने कहा जी कि अंडर सेक्शन 54 ऑफ पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1996 फेडरल गवर्नमेंट इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी ऑथराइजेज द ऑफिसर्स नॉट बिलो 18 ग्रेड रैंक टू बी नॉमिनेटेड फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय आईएसआई टू रिकॉर्ड मैसेजेस एंड कॉल्स एंड ऑल दैट। दिसंबर के अंदर इस्लामाबाद हाईकोर्ट जो थी उसके सामने जब ये केस आया था और ये केस जो था बुशरा बीबी लेकर आई थी और उन्होंने कहा था जी कि मेरी और मेरे जो हैं लॉयर लतीफ खोसा साहब के पास सामने जो बात हो रही थी उसकी पूरी वीडियो लीक करके जो सामने कोर्ट में लाई गई है और लोगों के सामने लाई गई है, इट इज अ वायलेशन ऑफ प्राइवेसी एंड डिग्निटी ऑफ स्पीच बिटवीन टू पीपल। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान मंसूर उस्मान आवान जो थे उन्होंने बताया था जी कि ये जो को बुलाया गया था कि ये जो पिटीशन डाली थी बुशरा बीवी ने उसके ऊपर जवाब देने के लिए और उसके ऊपर उन्होंने कहा था कि आप जवाब दें, तो अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा था कि गवर्नमेंट ने इंटेलिजेंस एजेंसियों को बिल्कुल कोई भी परमिशन नहीं दिया है कि वो ऑडियो जो कॉन्वर्सेशंस हैं उनको टैप करें, तो अगर नहीं दिया तो आज जी गवर्नमेंट ने इजाजत दे दी है विच इज अ वेरी वेरी बैड मूव, जिसके ऊपर पीटीआई जो है उसने कहा जी कि ये अनलिमिटेड पावर्स जो आप दे रहे हैं ये दिस विल वायलेट प्राइवेसी एंड ह्यूमन राइट्स विच इज राइट। आपको पता ही है एप्पल के ऊपर कितनी दफा आवाज उठाई जाती है, हालांकि एप्पल तो गवर्नमेंट नहीं है ना, एप्पल तो एक कंपनी है, उसके ऊपर वो कहते हैं जी आपने आईफोन ऐसे बनाए हैं जिसकी के सारी चीज अब आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, सुन सकते हैं, कोई भी उसको जो है वो, तो प्राइवेसी जो लॉज हैं वो उनके ऊपर ये एनक्रोचमेंट है। एंटी टेररिस्ट कोर्ट जो है लाहौर में उसने रिजेक्ट किया है इंटरिम बेल प्लीज ऑफ इमरान खान इन थ्री केसेस रिलेटेड टू मे 9 राइट्स। जज खालिद अरशद ऑफ लाहौर एटीसी ने ये वर्डिक्ट दिया है जो कि उन्होंने 3 दिन पहले रिजर्व किया था और उन्होंने हियरिंग कर रहे थे ये इंटरिम बेल प्लीज की जिना हाउस अस्करी टावर और शादमान पुलिस स्टेशन वेंडलिज्म के केसेस में और उन्होंने आज इनकी प्लीज रिजेक्ट की। लेकिन उसके साथ साथ अच्छी बात एक ये हुई कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट इन इस्लामाबाद जो है उन्होंने एक्विट किया है शाह महमूद कुरैशी को इन मे 9 केसेस। जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सोहेब बिलाल रांझा जो है उन्होंने ये वर्डिक्ट दिया जो इन्होंने रिजर्व किया था अपना आर्ग्यूमेंट एट द एंड ऑफ आर्ग्यूमेंट्स ऑन इक्विटल प्ली। लेकिन फिर भी कुरैशी साहब जो हैं वो भी 55 केसेस जो हैं वो फेस कर रहे हैं विच वर रजिस्टर्ड एट सम पुलिस स्टेशंस इन इस्लामाबाद एंड पंजाब। तो जनाब ये मारामारी जो है मुल्क में अभी भी चल रही है। तो वो जो सोच रहे थे लोग इमरान खान साहब शायद कुछ दिनों में बाहर आ जाएंगे, मुश्किल लग रहा है अब जो है। जब तक मैंने आपसे कहा ना ट्रंप साहब नहीं आएंगे, पाकिस्तान की हालत नहीं बदलेंगे, इसलिए दुआ मांगो ट्रंप साहब आ जाएं। इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट जो है उन्होंने आज मोदी जी की गवर्नमेंट को कहा है कि हिंदुस्तान के अंदर प्रेस को खामोश कर दिया गया है, उसको कोई भी फ्रीडम नहीं है और ना ही जर्नलिस्टों की सेफ्टी का आपने कोई प्रबंध किया है। प्रेस फ्रीडम जो है वो आपके मुल्क में डिटेरियोरेट की है और जबकि उन्होंने कहा कि मोदी जी जब से आप 2 टर्म से आए हुए हैं तो ये ड्रामेटिकली खराब हुई है प्रेस फ्रीडम और आपने कोई कॉन्क्रीट स्टेप्स नहीं लिए हैं जर्नलिस्टों के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। उन्होंने कहा जी कि आपको प्रेस फ्रीडम प्रोटेक्ट करनी चाहिए और जो है आप कॉन्स्टेंटली आपकी गवर्नमेंट थ्रेटन करती है जर्नलिस्टों को अपना फ्री काम करने से जबकि वो सिर्फ अपना काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा जी कि इंडियन अथॉरिटीज जो है वेपनाइज करती हैं बड़े ही अजीबो गरीब किस्म के लॉज जो कि वो अब लेकर आ गए हैं जैसे कि अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट और दूसरे इस तरह के रेगुलेशन जिसमें कि सेंसर किया जाता है जर्नलिज्म को और मीडिया आउटलेट्स को जो कि क्रिटिकल होते हैं ऑफ बीजेपी। वो कहते हैं जी ये लॉज जो हैं आपके जो क्रिटिकल जर्नलिस्ट हैं उनको टारगेट करते हैं खासतौर पे इन इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर और ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव हरासमेंट है इसको भी यूज किया जाता है कि फॉरेन जर्नलिस्ट जो हैं उन तक को चुप कराने के लिए कैसे कि उनको वीजे नहीं दिए जाते हैं उनका ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया स्टेटस जो है वो रिवोक किया जाता है। एक जर्नलिस्ट के बारे में उन्होंने कहा कि वो ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन से थी उनको तो मुल्क से ही निकाल दिया गया और उनको कहा जी कि रिपोर्टिंग में आपने रेड लाइन क्रॉस की है जबकि उन्होंने बीजेपी और उसकी पॉलिसीज और मोदी जी को क्रिटिसाइज किया था। तो आज इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट ने कहा मोदी जी थोड़ा फ्रीडम देने का तो अभी क्या करेंगे हैं जी ऐसा है। और जनाब दुनिया आज भड़क गई, भड़की किस बात पे, एक जफ्फी पे। हालांकि आपको पता ही है संजय दत्त क्या कहते हैं जादू की जफ्फी है जी, मोदी जी जिधर जाते हैं वो जादू की जफ्फी डालते हैं लेकिन दुनिया तो आज भड़क गई। हुआ ये कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की और सेक्रेटरी ऑफ जो स्टेट डिपार्टमेंट है अमरीका का वो भड़क गए हैं आज जबकि मोदी जी जो पहुंचे हुए हैं मॉस्को में उन्होंने पुतिन साहब को दी जफ्फी है। मोदी जी उनके गले, आपको पता है मोदी जी को गले लगाने का लोगों को बड़ा शौक है तो मोदी जी के इन्होंने गले लगाए। प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने कहा कि द सेम डे जिस वक्त रशिया ने यूक्रेन के चिल्ड्रंस हॉस्पिटल के ऊपर मिसाइल अटैक करके कितने बच्चों को मारा और हॉस्पिटल को बर्बाद किया उस दिन मोदी जी जो हैं वो जफियां डाल रहे थे। इंडिया ने कहा जी हमारी एक ही कंसिस्टेंट पॉलिसी है जिसमें हमने सब पार्टीज को कहा है कि आपको यूएन चार्टर को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा और पीसफुल डायलॉग में एंगेज करना पड़ेगा। यह मोदी जी का पहला बायलैटरल ट्रिप है थर्ड टर्म लेने के बाद। तो मॉस्को पहुंचने पे मोदी जी जो हैं उनको ऑफिशियल उनके जो रेजिडेंस था नोवो ओगरयोवो वहां पे डिनर के लिए बुलाया गया था और दोनों ने एक दूसरे के साथ जफियां डाली और ये जो तस्वीरें जो थी हक की ये सर्कुलेट ग्लोबली हुई जिसके ऊपर ज़ेलेंस्की साहब भड़क गए। उन्होंने कहा जी मैं बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूं और ये डेविस्टेटिंग ब्लो है टू पीस एफर्ट्स और मुझे बड़ा अफसोस है कि दुनिया की जो सबसे बड़ी डेमोक्रेसी का हेड है वो गले लगा रहा है दुनिया के मोस्ट ब्लडी क्रिमिनल को मॉस्को के अंदर उस दिन जिस दिन हमारे चिल्ड्रंस हॉस्पिटल पे अटैक हुआ। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के स्पोक्स पर्सन मैथ्यू मिलर साहब ने भी रिपोर्टर्स के साथ बात करते हुए कहा, जी हमने हिंदुस्तान को कहा है कि मोदी जी अपना ये जो ट्रिप कर रहे हैं रशिया का, उसके अंदर जो है ये लड़ाई को रोकने की बात करें और रशिया को बताएं कि यूएन चार्टर को फॉलो करें और यूक्रेन की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और सॉवरेनिटी का ख्याल रखें। इंडिया जो है वो एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है और हम उसके साथ बड़ा फ्रैंकली और ओपनली डायलॉग में जाते हैं और हमारा लेकिन कंसर्न है कि इंडिया के ताल्लुकात रशिया से बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। व्हाट इज दिस? तो इंडिया तो कहता है खली वली, इंडिया को बड़ी परवाह है आपकी, बोलते रहो आप, कोई परवाह नहीं करते वो, और बड़ी अच्छी बात है वैसे। कोई तो ऐसा कंट्री होना चाहिए ऐसे। और जनाब ये तो चीजें और भड़क गई हैं इंडिया में। कर्नाटका के बीजेपी एमएलए भारत शेट्टी, उन्होंने कहा मेरा दिल चाहता है कि राहुल गांधी को चमाटे मारूं पार्लियामेंट के अंदर, क्योंकि उन्होंने ये कहा है कि बीजेपी जो है वो वायलेंस और हेट्रेड स्प्रेड करती है। हाँ, ये कैसे बयान है भाईजान? ही इज द लीडर ऑफ अपोजिशन, व्हाट इज दिस? उन्होंने कहा जी के जो है हिंदुओं को शास्त्रा का भी पता है, शास्त्रा कहते हैं वो उनके जो स्क्रिप्चर्स हैं वो, और शास्त्र का भी, शास्त्र होते हैं वेपन्स, उनका भी पता है, और हम जो हैं गांधी जी की तो मुझे समझ नहीं आ रही कि इतनी करेज कैसे आ गई है कि वो हिंदुओं को इतना ज्यादा जो है वो अब टारगेट कर रहे हैं। हिंदू जो है वो सोए हुए हैं, तो यानी कि सोया हुआ शेर है हिंदू, उसको जगाने की कोशिश गांधी जी मत करो, और मेरा दिल चाहता है कि पार्लियामेंट के अंदर कोई और भी इनको जरा थप्पड़ मारे और इनके लिए एफआईआर इनके अगेंस्ट करे, और असॉल्ट के केस नहीं, सिर्फ जो है ये दूसरे के जो ये बातें कर रहे हैं बीजेपी के लिए। कांग्रेस के लीडर तो आप जिसके ऊपर भड़क गए, उन्होंने कहा अच्छा भाईजान हम तो आपको डेयर करते हैं, अपना करेज और अपना स्ट्रेंथ लेकर आओ और हमारे एक कॉमन वर्कर के ऊपर भी हाथ उठा के दिखाओ, तो फिर हम तुम्हें बताएंगे। फॉर्मर मिनिस्टर एंड सीनियर कांग्रेस के लीडर रामनाथ राय ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिपोर्टर्स को बोला इन मैंगलूर, उन्होंने कहा जी के, और इसी तरह पार्टी के जो उदप्पी डिस्ट्रिक्ट के जो प्रेसिडेंट है रमेश कंजन, उन्होंने कहा हम भी कुछ फारग नहीं बैठे हैं, हमने भी भरत साहब कुछ चूड़ियां नहीं पहनी हुई हैं, आपने तो कॉन्स्टिट्यूशन के या संविधान के अंडर एक ओथ लिया है, तो आप एक राउडी की तरह कैसा बिहेव कर रहे हो? ये देखो मेरे साथ बैठा आमिर, बिल्कुल राउडी की तरह बिहेव करता है मेरे साथ, तो राउडी बिहेव करने में क्या प्रॉब्लम है? ये देखिए राउडी, तो उन्होंने कहा तुम कैसे ऐसा राउडी की तरह बिहेव कर सकते हो, है जी ऐसे है। बहरहाल जी गर्मी चल रही है वहां पे भी, ओह सही गर्मी पड़ी हुई है, सही गर्मी चल रही है, सही गर्मी। और जनाब शाहरुख खान साहब और उनकी बेटी सुहाना जो है वो न्यूयॉर्क की आजकल सैरें कर रहे हैं, और जो किंग खान है वो एक दुकान में गए और वहां पे जूते वूते कुछ ट्राई कर रहे थे, फिर कुछ लोग आ गए, फिर उन्होंने अपने फैंस को ऑटोग्राफ्स दिए, तो लोगों को बड़ी हैरत हुई कि ये बाप बेटे की बेटी की जोड़ी कैसे न्यूयॉर्क पहुंची हुई है। तो पता चला कि जो इनकी एक्शन थ्रिलर फिल्म किंग आने वाली है उसका कुछ प्री प्रोडक्शन कोलैबोरेशन वर्क चल रहा है, उसके लिए ये बाप बेटा यहां पे हैं। और जी संजीव कुमार साहब जिनको के कहा जाता था हरी भाई, उनका आज था जन्मदिन। ही वॉज बॉर्न ऑन जुलाई 9, 1938 और उनकी डेथ हुई थी नवंबर 6, 1985 को, जस्ट एट अ वेरी प्राइम एज ऑफ 47। 165 फिल्म्स में उन्होंने काम किया था, 155 हिंदी थी, 10 जो थी दूसरी लैंग्वेजेस की थी। अपनी किताब संजीव कुमार द एक्टर वी ऑल लव्ड, परेश रावल जो हैं उन्होंने बात करते हुए कहा था, जमुना दास जो उनके मैनेजर से, उनसे उन्होंने कहा कि जी संजीव कुमार के लिए मैंने पूछा कि जिस वक्त शोले बन रही थी तो उसमें संजीव कुमार को कैसे कास्ट किया गया, तो उन्होंने कहा जी कि अमिताभ जैसे बड़े स्टार को स्क्रीन पे सवाए संजीव कुमार के और कौन मैच कर सकता था। आपको पता ही है कि संजीव कुमार साहब बहुत ही छोटी उम्र में जो एल्डरली रोल जो थे वो करना शुरू हो गए थे, जैसे कि शोले में जो 1975 में आई थी उस वक्त ये सिर्फ 40 साल के थे, और फिर भी सॉरी 37 इयर्स के थे जब ये ठाकुर बने थे शोले में, और इन्होंने जो है वो बूढ़े का रोल किया था। इसी तरह त्रिशूल 1978 में जो आई थी उसमें भी ये जो थे 40 ईयर्स के थे और फिर भी इन्होंने जो है ऐसा रोल बूढ़े का किया था। मौसम 1975-37 के थे लेकिन बूढ़े का रोल किया था। सवाल जो 1982 में और देवता 1978 में आई थी तो बहुत ही छोटे थे। 47 की एज में तो उनकी डेथ भी हो गई थी, तो आप सोचें कि छोटी एज से ही ये बूढ़े का रोल करते थे। तो वो कहते हैं जी कि ये जो है हमेशा बड़ा बनते थे, बिग बी के फादर जैसे बने थे। विजय कुमार, शशि कपूर के बने थे फादर, शेखर कुमार इन त्रिशूल और इसी तरह के जो रोल करते थे आर के गुप्ता और ये बड़े बड़े इन सारे जो एक्टर्स हैं, तो उनको अच्छा लगता था कि वो एक बड़े का रोल जो है वो करें, लेकिन हर तरह का रोल उन्होंने किया। और जनाब आपको पता ही है अरबाज खान का शो जो है द इनविंसिबल्स बड़ा जबरदस्त चल रहा है और इस जो एपिसोड थी उसके अंदर उन्होंने बुलाया बड़े मशहूर फिल्म मेकर रमेश सिप्पी साहब को, जिन्होंने आपको पता है ये फिल्म आइकॉनिक बड़ी बनाई थी शोले। तो उसके ऊपर कुछ खुलासे किए सिप्पी साहब ने, तो उन्होंने कहा जी कि ये जो एक फिल्म आई थी शक्ति जिसके के अंदर अमिताभ बच्चन और थे दिलीप कुमार साहब थे और दिलीप कुमार के बेटे बनाए गए थे अमिताभ बच्चन को, तो रमेश सिप्पी ने कहा इनिशियली तो ये रोल हम राज बब्बर को देने वाले थे क्योंकि जो मेन फोकस था वो तो दिलीप साहब के ऊपर था और ये तो बिल्कुल ही एक छोटा सा रोल था शक्ति के अंदर, तो हमने सोचा कि अमिताभ जैसे बड़े स्टार को क्यों ले। लेकिन जब बात आई कि जी दिलीप साहब के साथ काम करना है तो ये खुद से सामने आ गए अमिताभ बच्चन और उन्होंने कहा कि नहीं नहीं मैं ही इस फिल्म के अंदर जो है वो काम करूंगा। तो अरबाज ने उनसे पूछा कि आप ये जो ग्रेट मिलेनियम्स को आप कर रहे थे तो कितना डिफिकल्ट था इन दो मेगा स्टार्स को मैनेज करना, कोई नखरे वखरे ये करते थे, कैसे आपने इनको संभाला? तो सिप्पी साहब ने कहा कि हाँ मुझे पता है आप मेरे से बहुत ही कोई जूसी किस्म की डिटेल्स मांगना चाहते हैं लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे पास कोई जूसी डिटेल्स है नहीं क्योंकि ये दोनों ही बड़े प्रोफेशनल और अच्छे स्टार्स थे और वो दे यूज टू गेट अलॉन्ग ऑल्सो वेरी वेरी वेल। तो सारा पानी फेर दिया है जी उसकी सारी जो वो जो क्वेश्चन था एक साक्षी किस्म का अरबाज का उस पर। और जनाब नोवाक जोकोविच ओनली 37 ईयर्स ओल्ड हैं लेकिन जरा काफी इंजरीज वगैरह आ रही हैं, लेकिन उन्होंने डिफीट किया होल्गर रूने को जबकि पूरा कोर्ट रूने कर रहा था, वो चाहते थे रूने जीते और इन्होंने जी इनको स्ट्रेट सेट्स में हराया और अपनी रीच किया 60th ग्रैंड स्लैम क्वार्टर फाइनल के अंदर और ये 15th विमिल्डन जो है अपना खेल रहे हैं। वर्ल्ड नंबर 2 जोकोविच जो है 7-time विमिल्डन चैंपियन है और चेज कर रहे हैं अपना रिकॉर्ड सेटिंग 25th मेजर। इन्होंने डिफीट किया 15th रैंक डैनिश अपोनेंट रूने को। इनकी जो नी थी उसके ऊपर इन्होंने राइट नी के ऊपर अपना नी सपोर्ट पहना हुआ था क्योंकि लास्ट मंथ ही इनकी सर्जरी हुई थी, फिर भी जबरदस्त ये खेले और रूने साहब जो हैं सिंगल पॉइंट भी जो नहीं कर सके। तो जब इनको बूइंग इनकी हो रही थी तो इन्होंने जब एंड हुआ मैच तो इन्होंने कहा जी कि ये जो बूइंग है ये डिसरेस्पेक्ट शो करती है प्लेयर्स के लिए और वो उनको नहीं करना चाहिए, लेकिन आई एम थैंकफुल टू दोज जिन्होंने चुपचाप बैठ के ये गेम देखा और उसको एंजॉय किया। पीसीबी के जो चेयरमैन है जी मोहसिन नकवी साहब, उन्होंने कहा जी कि ये जो व्हाइट बॉल कोच गैरी क्रिस्टन और रेड बॉल कोच जेसन गिल्स भी हैं उनको मेरी पूरी सपोर्ट रहेगी, जो भी वो कोचिंग के लिए टीम के लिए डिसीजन बनाएंगे मैं उनके साथ खड़ा रहूंगा। इसके साथ साथ उनकी मीटिंग जो है असिस्टेंट कोच अजहर महमूद के साथ भी हुई और उन्होंने कहा जी मैं बड़ा कॉन्फिडेंट हूं कि ये सब लोग टीम को बहुत अच्छे से आगे लेके जाएंगे। उन्होंने कहा जी कि जो फॉरेन ये जो कोचेस थे उन्होंने कहा जी कि हम बिल्कुल ये फैसला करेंगे कि जिस वक्त तक कोई फिट नहीं होएगा टीम के अंदर उसका इंक्लूजन नहीं होएगा, तो इंक्लूजन इन स्क्वाड भी सब्जेक्ट टू फिटनेस। इसके अलावा उन्होंने कहा जी कि हम एक कॉम्प्रीहेंसिव प्लान बनाएंगे टू इम्प्रूव देयर बैटिंग एंड बोलिंग एंड फील्डिंग और उन्होंने कहा कि जो है ये बड़ी अच्छी टीम है पाकिस्तान की लेकिन जो है ये सही से खेलते नहीं है, इनका टीम कॉम्बिनेशन ठीक नहीं है। फॉरेन कोचेज ने उन्होंने बहुत सारे सजेशन भी दिए नकवी साहब को, नकवी साहब ने तमाम चीजों को माना। इन दोनों को हायर किया गया है फॉर द नेक्स्ट 2 ईयर्स। क्रिस्टन जो है उन्होंने इंडिया को लीड किया था इन वर्ल्ड कप ग्लोरी इन 2011 और उसके बाद ये पाकिस्तान को अब कोच करेंगे फॉर 5 T20 सीरीज अगेंस्ट इंग्लैंड एंड T20 वर्ल्ड कप 2024 में, तो आखिरी हफ्ते में ये आए थे तो अभी जो है वो पता चलेगा इनका कि अब कैसे करेंगे। गिल्स भी जो है उन्होंने भी कहा जी कि मैं तो पाकिस्तान को पहली दफा लीड कर रहा हूं इन रेड बॉल सीरीज अगेंस्ट बांग्लादेश जो कि प्ले की जाएगी इन वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023-25 साइकिल एट द एंड ऑफ अगस्त। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की टीम बहुत ज्यादा टैलेंटेड है लेकिन वो कंसिस्टेंसी इन परफॉर्मेंस जो है उसको लैक करती है। और इसके अलावा जो नकवी साहब है वो 20 फॉर्मर पाकिस्तान टेस्ट क्रिकेटर्स के साथ भी मुलाकात करेंगे कर रहे हैं एक लोकल होटल में और उन सब से जो है सजेशंस ले रहे हैं कि हम अपनी टीम को अच्छा कैसे कर सकते हैं। और अगेन जैसा मलिक साहब ने प्रिडिक्ट किया था वैसा ही हुआ। हार्दिक पांड्या जो हैं वो हिंदुस्तान के नेक्स्ट T20 कैप्टन होंगे एंड आमिर लॉस्ट अगेन आफ्टर रोहित शर्मा। हाँ जी हाँ जी, आप तो हमेशा ही कहते हैं लेकिन फिर भी आप लूज कर जाते हैं। और उन्होंने कहा जी कि हार्दिक पांड्या को हम इसलिए चुन रहे हैं कि उसकी एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस थी T20 वर्ल्ड कप में। जसप्रीत बुमराह जो हैं वाइस कैप्टन रहेंगे, कैप्टेंसी जो थी उसके लिए बुमराह और सूर्या कुमार यादव जो थे उसके नाम भी डिस्कस किए गए थे, लेकिन पांड्या ने जिस तरह से अपनी टीम को लीड किया है और खासतौर पर जो फाइनल में उसने बोलिंग की है उसकी बेस पे उसको जो है ऑलराउंडर है वैसे तो ये हार्दिक पांड्या, तो उन्होंने कहा जी कि इनको हम जो बैटिंग भी उन्होंने की और जो आखिरी ओवर किया था बड़ा जबरदस्त किया था तो उसके लिए हम इसको कर रहे हैं। तो अब ये वो कह रहे हैं वैसे भी हम इसको रेडी करना चाहते हैं 2026 का जो T20 वर्ल्ड कप होने वाला है इंडिया और श्रीलंका में खेला जाएगा। इंडिया जो है इस वक्त प्ले कर रही है 5 मैच T20 सीरीज अगेंस्ट जिम्बाब्वे। शुभमन गिल जो है इस टीम को लीड कर रहे हैं, सीरीज अभी टायर्ड है 1-1 पे। इसके साथ साथ गौतम गंभीर जो है उसको भी इंडिया का आज हेड कोच अनाउंस किया गया है। रोहित शर्मा जो है वो कैप्टन रहेंगे इंडिया की टेस्ट और ओडीआई टीम्स के लिए बीसीसीआई के मुताबिक। एंड जनाब एब्सोल्युटली अवर लास्ट न्यूज, यूरो 2024 का जो आज मुकाबला था वो स्पेन और फ्रांस के बीच में था और स्पेन जो है उसने 2-1 से ये मैच जीता और कल जो है अब इंग्लैंड और नेदरलैंड्स के बीच में मैचेस रहेंगे। तो अब जो उसमें से जीतेगा वो फिर अब